बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंद तंजीमों का किरदार। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मजहबी इंतहा पसंदी के किरदार और मजहबी इंतहा पसंदी के फ़रोग के अवामिल के बारे में गुफ्तगू होगी, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुद को पहली सफ का मुल्क करार देने वाले पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दों के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन हो चुके हैं और इस वक्त भी अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन ऑपरेशनों के नतीजे में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों में ऐसी कोई कमी वाकई नहीं हुई है कि जिसे बाकायदा महसूस किया जा सके, बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ ज़र्बे अज़्ब जैसे वसी ऑपरेशन के दौरान भी हमलों का सिलसिला जारी है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं है कि दहशतगर्द तंजीमें हर हाल में अपना वजूद और हमले की ताकत बचाए रखने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सी इंतहा पसंद तंजीमों पर पाबंदियां भी आयद की जा चुकी हैं, लेकिन सरकारी सतह पर ऐलान हुआ है कि कलअदम तंजीमें दूसरे नामों से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अहमद खान ने अपने एक बयान में इस हकीकत का एतराफ़ किया है कि कलअदम तंजीमों की सरगर्मियाँ जारी हैं, बस उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। चौधरी निसार अहमद खान ने यह भी कहा है कि हालिया हमले लश्कर जंगवी ने किए हैं, जिसने तालिबान से हाथ मिला लिए हैं, और इन हमलों का मकसद जेलों में बंद सजा याफ्ता दहशतगर्दों को फांसी पर लटकाए जाने के सिलसिले को रुकवाना है। पाकिस्तान की वजारत दाखिला का दावा है कि अलकायदा के इनकार के बाद इस तंजीम ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर मुल्ला फजलुल्लाह से राबता किया, जिसने न सिर्फ लश्कर जंगवी को रकम फराहम की बल्कि मजीद मुआवनत फराहम करने का वादा भी किया। वजारत दाखिला की तरफ से जारी मुरासले में कहा गया है कि जनूबी पंजाब के इलाके कबीरवाला के एक शख्स अब्दुल रहमान को पंजाब में लश्कर जंगवी की कार्रवाइयों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बड़े हमलों की मनसूबाबंदी कर ली है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में हालिया शिद्दत पसंदी के वाकयात के पीछे लश्कर जंगवी और मुल्ला फजलुल्लाह का गठजोड़ है। दरियासना गौसे आजम कॉन्फ्रेंस से सरबराह अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद आबिद मुबारक कादरी ने खिताब करते हुए कहा है कि कलअदम तंजीमें दहशतगर्दों को तहफ़ फराहम कर रही हैं। नकल मकानी की आड़ में दूसरे शहर जाने वाले दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और नाम बदलकर काम करने वाली तंजीमों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और उनके रहनुमाओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस बयान से भी इस हकीकत की निशानदेही होती है कि कलअदम तंजीमें दहशतगर्दों और तालिबान अस्करियत पसंदों की पनाहगाह हैं। सवाल यह है कि किसी तंजीम पर पाबंदी आयद करने से पहले उस तंजीम के बारे में हुकूमत की मालूमात क्यों इतनी नाकिस होती है कि पाबंदी लगने के बाद तंजीम के अफराद नए सिरे से सरगर्म अमल हो जाते हैं। तंजीम को चलाने वाले अहम और बुनियादी अनासिर को इस तरह से कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता कि वो दूसरे नाम से सरगर्मियां अंजाम देने के काबिल न रहें। तजिया निगारों का एक हलका ये मानता है कि कुछ कलअदम तंजीमों को कानूनी कार्रवाई का सामना होने के बावजूद महफूज राहदारी दे दी जाती है। जाहिर है कि जब तक इस अंदाज से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी, उस वक्त तक इस लानत को काबू में करना मुमकिन नहीं होगा।
नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली ने, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, कहा है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी की हालिया वारदातों में लश्कर जंगवी का हाथ रहा है। उनका कहना है कि लश्कर जंगवी ने तालिबान पाकिस्तान के तआवुन से शिया मुसलमानों के मजहबी मराकज़, उनकी मसाजिद और इमाम बारगाहों पर दहशतगर्दाना हमले किए हैं। लश्कर जंगवी सिपाही साहबा की जैली तंजीम है। दोनों तंजीमें पाकिस्तान में ममनुआ हैं, लेकिन पूरी तरह सरगर्म है। सिपाही साहबा इन दिनों पाकिस्तान में अहले सुन्नत वल जमात के नाम से सरगर्म है और अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। साबिक सिपाही साहबा और मौजूदा तहरीक अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अहमद लुधियानवी ने पाकिस्तान में एक टीवी प्रोग्राम में सराहत के साथ शिया मुसलमानों की नस्ल कुशी को जायज करार दिया है, जिस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने बजा तौर पर एहतजाज किया है। लश्कर जंगवी के बारे में ताज़ा रिपोर्ट यह है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता दिनों 30 मुसाफिरों का अगवा भी इसी तंजीम ने किया है। पाकिस्तान में लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा जैसी बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। ان کے نام الگ الگ ہیں لیکن کام اور مقصد ایک ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز ہی مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ ہوا ہے۔ مختلف انتہا پسند مذہبی تنظیمیں کافی عرصے سے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہیں۔ اکثر پاکستانی تجزیہ نگاروں اور غیر جانبدار اسلامی اسکالروں کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو وجود میں لانے اور اس کو ہوا دینے میں وہابیت نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور وہابیت کے فروغ میں ہر دور میں سعودی حکومت سرگرم رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پاکستان میں دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے حوالے سے ان مدرسوں کے بارے میں بھی بحث ہو رہی ہے جن کی فنڈنگ غیر قانونی طور پر سعودی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، جن مدرسوں کو سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر رقوم ملتی ہیں ان میں اکثر تکفیری مفتیوں سے وابستہ ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ مدرسے دہشت گردوں کی تربیت گاہ نہ ہوں لیکن تکفیریت پھیلانے کے مراکز ضرور ہیں، اور آج مذہب کے نام پر ہونے والی دہشت گردی کی جڑ تکفیریت ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم لشکر جھنگوی کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ گروہ کب اور کس طرح وجود میں آیا، سپاہ صحابہ سے اس گروہ کا رشتہ کیا ہے، تکفیریت اور اس گروہ کے نظریات میں کتنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس دہشت گرد گروہ کے لیڈران سے حکومت اور حکومتی ادارے واقف ہیں یا نہیں۔ جب حکومت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی مساجد اور امام بارگاہوں پر جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں وہ سب لشکر جھنگوی کا کام ہے اور اس نے یہ حملے طالبان پاکستان کے تعاون سے کیے ہیں، تو طالبان پاکستان کے خلاف تو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، لشکر جھنگوی کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے، اس بارے میں بھی ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار علی جعفر زیدی، کراچی سے معروف تجزیہ نگار سید علی رہبر عابدی اور آسٹریلیا سے ممتاز تجزیہ نگار سیرت عباس حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں علی رہبر سے جو ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی عابدی صاحب السلام علیکم۔ رہبر صاحب، لشکر جھنگوی پاکستان میں کب اور کس طرح وجود میں آیا؟
جی جناب، اس کا تو تاریخ جو ہے اس کی کافی پرانی ہو چکی ہے۔ 1987 سے یہ کچھ ان کی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ درپردہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے، لیکن جب منظر عام پہ جو اصل سرگرمیاں آئی ہیں وہ 1987 سے آنا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد سے ان کی جو ہے دہشت گردانہ کارروائیاں اور مختلف قسم کی مذہبی منافرت پھیلانے والی کارروائیاں منظر عام پہ آئیں۔
جی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو کو رخ کرتے ہیں جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں۔ زیدی صاحب، پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے اپنے ایک بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی مراکز پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سب لشکر جھنگوی نے کیے ہیں۔ لشکر جھنگوی کا سپاہ صحابہ سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیے، ان سب کا تعلق آپس میں وہی ہے جو ماں بیٹی اور خالہ اور بھانجی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے سپاہ صحابہ کو کریٹ کیا، اور اس میں وہاں اس وقت جو بھی پولیٹیکل فگرز ضیاء الحق کے ساتھ تھیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس فیصلے میں انہوں نے پوری مدد کی، اور فوج کا بہت سا ایلیمنٹ اس وقت اس بات کی سپورٹ میں تھا، اور اس طرح سے سپاہ صحابہ ایک دہشت گرد مذہبی تنظیم کھڑی کی گئی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب اور ویسٹ کی مدد سے اسلام کے نام پر امریکہ کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اس دوران سعودیز نے ضیاء الحق کے ذریعے سپاہ صحابہ کا بیج ڈالا اور وہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہو کر ایک تناور درخت بن گیا، اور اس کے تناور درخت بننے میں ان سب کی سرپرستی اس میں شامل حال رہی. یہ سب کے سب آج کے جو سیاستدان ہیں یا جو آرمی میں جو اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے جو اس طرح کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، یہ سب کے سب ضیاء الحق کے دور کی پیداوار ہیں. آج جو حکمران ہیں اس کے ارد گرد اکثر جو شخصیات ہیں انکلوڈنگ نواز شریف، یہ سب ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہوئے، اور ان کا ہدف سعودی عرب کے جو اہداف ہیں اس سے ملا رہا، اور پاکستان ایک دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن چکا ہے. ان سب کو، یہ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر، ان سب کے نالج میں کیا یہ نہیں ہے کہ ان مدرسوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ ان مدرسوں میں سے جو دہشت گرد، یہ بم ساز فیکٹریاں ہیں جو پاکستان میں درس گاہوں میں بن چکی ہیں، وہاں سے جو پروڈکٹ باہر نکلتا ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کا استعمال مڈل ایسٹ میں، جہاں جہاں بھی امریکن انٹرسٹ ہے، سعودی انٹرسٹ ہے، وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ داعش ISIS ہو یا سیریا کے خلاف ان کا عمل ہو یا وہ یمن یا بحرین. تو یہ سب کی سب جو دہشت گردوں کی وہاں پناہ گاہیں ہیں، بم ساز فیکٹریاں ہیں پاکستان میں، وہاں سے یہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ باہر بھی ان کا استعمال ہو رہا ہے اور ملک پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو حکمرانوں کی اور فوج کے ایک ایلیمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہے. یہ نام بدلتے ہیں، حکمرانوں کو معلوم ہے نام بدلتے ہیں، حکمرانوں کے علم میں ہے کہ کون کون پیچھے ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، یہ لوگ کہاں چھپتے ہیں، کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. تو وہ سب کے علم کے باوجود یہ اس لیے عمل نہیں کرتے ان کے خلاف کہ ایک تو اس میں بلین ڈالرز کا کاروبار ہے. ایک مدرسہ کھلتا ہے، ایک درسگاہ کھلتی ہے، اور اس سے لے کر اور اسلحے کو باہر ایکسپورٹ کرنے تک، اور ان دہشت گردوں کو بم ساز جو فیکٹریاں وہاں سے باہر ایکسپورٹ کرنے تک، یہ بہت بڑا ایک کاروبار ہے جس میں یہ مذہبی انتہا پسند جو رہبر ہیں وہاں کے، اسلامی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ حکمران اور فوج کے کچھ جرنیل اس میں شامل ہیں. یہ بلین ڈالرز کا کاروبار ہے، اور یہ چودھری نثار جو بھی کہتے ہیں یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، یہ عوام کی اشک شوئی کے لیے ہے. یہ عوام کو معلوم ہے کہ، یعنی یہ ایک فارچونیٹ بات یہ ہے کہ عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کے تانے بانے سعودی عرب سے ہیں، اور سعودی عرب کے تانے بانے امریکہ سے ہیں، جو پاکستان کو ایک انسٹیبل پاکستان رکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے دہشت گرد پیدا کر کے دنیا کے اور جو علاقے ہیں وہاں پر ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ دہشت گردی انفارچونیٹلی انڈر دا نوز آف دا رولر، یعنی حکمرانوں کی ناک کے نیچے یہ پرورش پاتی ہے. بلکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جوں ہی سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی کے لوگ پکڑے جاتے تھے، بالخصوص پنجاب میں، تو انہی کے منسٹر حضرات یا ایم این اے حضرات ان کو جا کے جیلوں سے یا حوالہ سے رہا کروا کر لے آتے تھے. سب نے دیکھا ہے کہ کچھ ایم این اے کی جو الیکشن کمپین ہے وہ لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کے جو دہشت گرد ہیں ان کی جیپوں پر، ان کی گاڑیوں پر، ان کی سرپرستی میں ان کے ساتھ مل کر ہوتی رہی ہے. تو یہ انٹر لنکڈ ہے، ان کے نالج میں ہے، ان کی مرضی اس میں شامل ہے. یہ سعودی، یہ حکومت سعودی حکمرانوں کی سب سرویئنٹ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے والی حکومت نہیں ہے. یہ سعودی عرب اور امریکہ کے انٹرسٹ کو کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو سیو کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اور اس میں، اس سارے پروسیس میں پاکستان کا جو شیعہ ہے، معصوم شیعہ، جو پاکستانی ہے، جس کو پاکستان سے इनसे ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये तो बक्सा उठाकर भाग जाएंगे, पाकिस्तान के शिया पाकिस्तान में रहेंगे, उन्होंने खून दिया है, उनकी कुर्बानियां हैं, तो वो इस तमाम प्रोसेस में वो विक्टम है, आसान विक्टम है, और इसमें चूंकि बिलियन डॉलर्स इन्वॉल्व हैं इसलिए ये प्रोसेस जारी है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनके नॉलेज के में होते हुए ये इसको कंट्रोल नहीं कर रहे, और ना ही मेरा ख्याल है कि इनका इरादा है इसको कंट्रोल करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारा राबिता इस वक्त पाकिस्तान की एक और मुमताज़ तज़िया निगार सीरत अब्बास साहब से स्काइप के ज़रिए बरकरार हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। जी सीरत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
सीरत अब्बास साहब, चौधरी निसार का बयान आपके पेश नज़र होगा। चौधरी निसार साहब ने जहाँ ये कहा है कि ये जो हमले हुए हैं शिया मुसलमानों के मराकज़ पर, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला होने के बाद, ये हमले लश्कर झंगवी ने किए हैं। इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने ये कहा है कि कल अदम तंजीमें आज भी पाकिस्तान में दूसरे नामों से सरगर्म है। आपको याद होगा, मुझे भी याद है, और पाकिस्तान के अवाम को भी याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने वाज़े अल्फाज में ये ऐलान किया था कि अब पाकिस्तान में कल अदम तंजीमें दूसरे नामों से भी सरगर्म नहीं रह सकती हैं। तो फिर ये कल अदम तंजीमें सरगर्म कैसे हैं, जिनका एतराफ किया है चौधरी निसार साहब ने?
जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिन कलदन तंजीमों की ये बात कर रहे हैं, ये कलदन तंजीमें डिफरेंट नामों से आती रहेंगी, काम करती रहेंगी और एक ही मंशूर पे काम करती रहेंगी। इस वक्त जरूरत इन कलदन तंजीमों को बैन करने से ज्यादा उन अफराद को है जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, जिसमें आप मौलाना अहमद लुधियानवी को देख लें, औरंगजेब फारूकी को देख लें, और मलिक इसहाक जैसे दीगर और जो अफराद हैं जो ऐसी तंजीमों की सरपरस्ती करते हैं। मैं कहता हूं कि उनको बैन किया जाए जो शख्सियात हैं, क्योंकि तंजीमें तो आए दिन बनती रहती हैं, लेकिन जब तक आप इन शख्सियात को बैन नहीं करेंगे इनकी सरपरस्ती होती रहेगी। दूसरी जानिब मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उस वक्त आर्टिकल 6 के तहत फांसियों को रोका गया, जो एक अगर उस वक्त इसको रोका ना जाता तो मेरे ख्याल से आज हमको मिलिट्री कोर्ट्स या डिफरेंट जो हम हरबे अपना रहे हैं उनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी जानेब आप ये देख लें कि अभी नेशनल एक्शन प्लान जिस तरह से बना, माजी में भी नेशनल सिक्योरिटी प्लान नेक्टा के दीगर नामों से ये चीजें आ चुकी हैं सामने, लेकिन कभी भी उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। सन 2013 में अक्टूबर गालिबन अक्टूबर में काउंटर टेररिज्म के हवाले से नेक्टा के नेक्टा में ये चीजें डाली गई कि इस तरह से काउंटर टेररिज्म एक एक पुलिस की एक फोर्स होगी, जिस तरह से जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उस पर काबू पाया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि इन्होंने तालिबान से अमन मुजाकरात की भी बात करी, जबकि हम ये बात जानते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जिस इस्लाम की शरीयत की बात करते हैं उसका मेरे ख्याल से ना किसी मजहब से ना इंसानियत से किसी का इस किसी से ताल्लुक नहीं है। फिर हमने उनसे अमन की जब बात की उसके बावजूद उन्होंने हम पे और हमारे बच्चों पे हमले किए। फिर आपके सामने ज़र्ब अज़ब स्टार्ट हुआ। ज़र्ब अज़ब जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त गवर्नमेंट को चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि जब ज़र्ब अज़ब खत्म होगा या दौरान ज़र्ब अज़ब जो जो ये एलिमेंट्स टेररिस्ट एलिमेंट मिलिटेंट्स वहां से निकल के हमारे दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहां पे ये अफरा तफरी फैला सकते हैं। तो इस तरह तो आप ये भी देखें कि जब 9/11 हुआ तो उस वक्त अमेरिका अमेरिका की कांग्रेस में एक पैट्रियट एक्ट 2001 में गालिबन निकला, इसीलिए ताकि वहां के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हमारे मुल्क में सिर्फ APCs होती हैं, वहां पे ये एक्ट्स डिस्कस होते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होती है। दूसरी जानेब आप ये देखें कि जो इस वक्त पाक आर्मी है सरहद पे लड़ रही है, और हमारे जो पुलिस के इदारे हैं जो मेरे ख्याल से अगर शहर में कोई अफरा तफरी या किसी दहशतगर्दी होती है तो हम लोग पुलिस को इन्वॉल्व करें, उनको एम्पावर करें, अकाउंटेबिलिटी हो उनको, हम ऐसी सोर्सेज दें ताकि वो दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकें। हमारा बस, हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ एक यही मंशूर होता है कि कोई भी एक सानिया हो उसमें हम पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्मी को तलब कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आर्मी सरहद के लिए है और अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है जरब अज़ब के अंदर, लेकिन दूसरी जानब जो हमारी पुलिस है, जब तक हम उनको एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक हम उनको रिसोर्सेज नहीं देंगे और पॉलिटिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब तक हमारी पुलिस से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब तक खत्म नहीं होगा, हम सिस्टम को सही नहीं कर सकते। जबकि आपको ये बात मालूम है कि माजी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क दुश्मन जो नासिर हैं उनको पकड़ के कानून के हवाले कोर्टों के हवाले किया। ये बात हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि जब एक कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी को पकड़ते हैं तो वो इंटेलिजेंस बेस पे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं कि वो ऑल ऑफ अ सडन जाके किसी को पकड़ के ले आए, वो इंटेलिजेंस बेस पे पकड़ते हैं। बाकायदा उनका चालान होता है, बाकायदा उसमें इंटरोगेशन उनका होता है, अगर रिमांड है तो उसकी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, एफआईआर, और वो बाकायदा तौर पे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां से छुट के निकल के बाहर आते हैं तो या तो सिस्टम में कोताही है, और या तो अगर सिस्टम में कोताही है तो सिस्टम को मजबूत करना होगा। मैं दीगर जो पार्टीज हैं जो बयानात देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, उनसे ही गुजारिश करूंगा कि आप बयानात देने के बजाय पार्लियामेंट में जाके कानून साजी करें, कानून ऐसा बनाएं कि, और खास तौर पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको एम्पावर करें, उनको उनके अंदर जो पॉलिटिकल जो अंसर है उसको निकालें ताकि न्यूट्रल बेसिस पे काम हो सके, उनको रिसोर्सेज दें, क्योंकि जो दुश्मन है वो असले से लैस है। हमारी पुलिस में कैपेबिलिटी है काम करने की, हमारे जो इदारे हैं उनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन हमने अपनी आर्मी को भी इस जंग में हम ले आते हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पुलिस है और जो दीगर जो इदारे हैं उनको हम उनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये जब तक एक जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्हें बैन करने से बजाय कि जो सरपरस्त हैं उनको बैन किया जाए, जो प्रोसिक्यूशन है उसका जो सिस्टम है उसको न्यूट्रल किया जाए, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे पॉलिटिकल आंसर निकाला जाए, तभी जाके आप अपनी कौम की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब। जनाब सिपाही साहबा अपने नए नाम अहले सुन्नत वल जमात के नाम से अब भी पूरी आजादी के साथ सरगर्म है, या इसको महदूद किया गया है, इस पर पाबंदी लगाने की कोई कोशिश की गई है?
नहीं, ये ऐसा तो पाबंदी लगाने की तो बिल्कुल कोशिश की गई है, लेकिन ये अपने जो मौजूदा नाम है अहले सुन्नत वल जमात उसके साथ हमारे तो ये महसूस होता है कि और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा अपनी तवानाई के साथ ये सरगर्म अमल हैं, और अपनी कार्रवाइयों को इन्होंने और ज़्यादा मखसूस उसमें ढाल दिया है कि ये बड़ी
जी आबदी साहब से हमारा राबता मुनक़ता हो गया, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जहाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में गुफ्तगू हो रही है, कराची से हमारा राबता मुनक़ता है। चलते हैं अली जाफर जैदी साहब की तरफ। जैदी साहब, जनाब चौधरी निसार अली ने कहा है कि शिया मुसलमानों की मसाजिद और इमाम बारगाहों पर हमले लश्कर जंगवी ने तालिबान के ताबुन से जो किए हैं उनका मकसद है कि दहशतगर्दों को जो फांसियां दी जा रही हैं उनको रोकवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना। मेरा सवाल यह है कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए क्या सिर्फ शिया मुसलमान ही बचे हैं कि उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए? और क्या हुकूमत शिया मुसलमानों के कत्लेआम से दबाव में आ जाएगी? जी लगता है जैदी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, यही सवाल मैं सीरत अब्बास साहब से करना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सीरत अब्बास सर।
जी आप अपना सवाल रिपीट करें कि प्लीज, आपकी आवाज जरा ब्रेक हो
भाई,
रही है।
चौधरी साहब ने यह कहा है कि लश्कर जंगवी ने शिया मुसलमानों के मजहबी मराकज पर जो हमले किए हैं उनका असल मकसद जेलों में बंद दहशत गर्दों को फांसियों से बचाना है और इसके लिए हुकूमत पर दबाव डालना है। तो मेरा सवाल यह है कि फांसियां रुकवाने के लिए क्या शिया मुसलमान ही बेचारे बचे हैं कि उनको कत्लेआम का निशाना बनाकर हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाए?
देखें, शिया मुसलमानों की जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ जंग अब सिर्फ शिया मुसलमानों तक नहीं रही, बल्कि ये शिया मुसलमानों से बढ़ के दीगर जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं या जो अकलियती जमातों के जो लोग हैं वो वहां तक ये चीज सारे इसमें हम लोग विक्टिम्स बन चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई तफरीक नहीं रही मजाहिब में या मसलकों में, और मेरे ख्याल से ये एक साजिश है जो आप ये समझ लें मसलक की बुनियाद पे, या आप समझ लें कि एक शिया सुन्नी जंग करवाने की एक साजिश है। लेकिन मेरे ख्याल से अवाम बहुत बाशऊर है, अवाम को बहुत अच्छी तरह से ये बात पता है कि हमारे साथ कम्युनिटीज एक साथ हैं, सिविल सोसाइटी में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। दीगर जो जमातें हैं उसमें अहले सुन्नत जमात के जो मुफ्ती आलम दीन हैं उन्होंने भी इसकी हिमायत की है। और जहां तक ये बात है कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनके हवाले से जो ये अटैक्स हो रहे हैं, तो सानिया जो पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया था तो उसमें मेरे ख्याल से शिया बेस पे नहीं मारा, और जो दीगर हमारी मस्जिदें हैं या इमाम बारगाह हैं ये एक पे दर पे जो हमले हो रहे हैं ये सिर्फ हमको एक तरह से हमारी मसलक की बुनियाद पे या हमारे मजहबी फिरका वारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को शऊर पूरा है कि ये फिरका वारियत नहीं है, ये सिर्फ जंग है एक खारजियों की और मुसलमानों की। आपको मैं इस तरह ये बता दूं बात कि इन्होंने सानिया पेशावर करने की कोशिश की जिसमें कौम मुत्तहद होके एक प्लेटफॉर्म पे आई, उसके बाद इन्होंने मुतवातिर सानिया शिकारपुर, उसके बाद फिर पेशावर की हयातबाद और पिंडी की जो इमाम बारगाह थी इन पे हमले करके ये साबित करने की कोशिश की ये फिरका वारियत है। लेकिन उसके बावजूद जो आवाम का रिएक्शन था वो जबरदस्त रिएक्शन था और आवाम ने मुत्तहद होके इस साजिश का सामना किया और इसको इसको बेनकाब करने की कोशिश की। लेकिन जहां तक ये बात है कि शिया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें दोहरी राय कोई नहीं है कि बेचारे शिया कम्युनिटी को अब से नहीं बल्कि माजी माजी में भी बहुत सालों से हमको विक्टिम बनाया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस मखसूस मकतब फिक्र के लोगों की नस्ल कुशी की जा सके। इसके पीछे और भी एलिमेंट्स हैं, इसके पीछे और भी ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से शिया मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। माजी में भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात जिक्र किया कि ये अकायद की बुनियाद पे भी ये हमको टारगेट कर रहे हैं, चूंकि ये हमको जिस तरह से हमारे अकीदों को ये हिट करते हैं, जिस तरह से इनका लिटरेचर मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अब कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये सिर्फ शिया मुसलमानों की बात है, पाकिस्तान की बात है। इस वक्त पाकिस्तानियों पे ये ऐलान जंग हो चुका है, लेकिन इसमें शिया कम्युनिटी ज्यादा ऑब्जर्व इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको अभी मैंने बात बताई कि अकायद की बुनियाद पे, तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम पे ज्यादा जोर है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। जनाब साबिक सिपाही साहबा और मौजूदा अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह अहमद लुधियानवी ने अभी चंद रोज कबल एक टीवी प्रोग्राम में खुल के और सराहत के साथ शिया मुसलमानों की नस्ल कुशी को जायज करार दिया है। इस पर जो एक्शन हुकूमती इदारों की तरफ से आना चाहिए था वो आया है?
जी, एक्शन तो दूर की बात है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट मौजूद है हुकूमत में और बाकी अदारों में जो इनकी सरपरस्ती करते हैं। एक्शन नहीं हो रहा, और ये सबने देखा कि पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर शिया अफराद पर حملہ کرنے کے اعلانات کیے گئے ایمنیز کی بالکل یعنی چند گز کے فاصلے پر، اور اس کے بعد پھر یہ حملے ہوئے. تو اور یہ کالعدم تنظیمیں، کالعدم نام سے یعنی لفظ کے پیچھے یہ تنظیمیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن تنظیمیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اسلحہ ان کو ملتا ہے، پیسے ان کو ملتے ہیں، حکمرانوں کو معلوم ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. اگر وہ واقعی سنسیئر ہوں ان کو روکنے کے لیے تو یہ فنڈنگ بند پہلا سٹیپ ہے کہ اس فنڈنگ کو بند کیا جائے. فنڈنگ بند نہیں ہوگی کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ بلین ڈالرز کا کاروبار ہے. اور باقی میں پوری گفتگو نہیں سن پایا، ایک آدھ فقرہ میں نے سنا تھا کہ یہ چاہیے اور وہ چاہیے. پاکستان میں جو چاہیے کا کلچر ہے وہ آسان ہے کہنا، لیکن یہ چاہیے میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں. پاکستان میں وہ قوانین جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے وضع ہونے چاہیے، رفت چاہیے جو کہا گیا ہے، وہ قوانین موجود ہیں. قوانین کی موجودگی، عدالتوں کی موجودگی اور حکومت کا یہ کہنا کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سب کے موجود ہوتے ہوئے شیعہ نے پاکستان کا قتل عام کیوں نہیں رک رہا؟ یہ ایک پولیٹیکل اس کا ول اس میں نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. برے صغیر کے اس حصے میں، پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں اور افغانستان کے ادھر کے علاقے میں وہ پناہ گاہیں بن چکی ہیں جن کو پرورش کی ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اس میں فنڈنگ ہے، اسلحہ ہے، جہاں سے یہ دہشت گرد پالے جاتے ہیں اور یہ پھر ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، انٹرنلی بھی ان سے کام لیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ تمام شامل ہیں. یہ ان کے نالج کے ان کی یعنی علمی ان کے نالج میں ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ڈیلیبریٹ ہے، اس میں ول نہیں ہے، حکومت کی ول شامل نہیں ہے کہ دہشت گردی کو روکا جائے. یہ ضربے جو فوج کا جو ضرب عظیم، یہ جو جس کو کیا آپریشن شروع ہوا ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف، یہ بھی آرمی کا اپنا ڈیسیزن ہے جس میں یہاں کے سیاستدان اس پہ خوش نہیں تھے، اب بھی خوش نہیں ہیں. وہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں. جو کمیٹی بنی ہے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ان کے ساتھ جن کے رابطے ہیں. ان کے نواز شریف صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں اس میں دو ایسے ہیں جن کو پرسنلی میں جانتا ہوں جو طالبان کے سپورٹر رہے ہیں، آج بھی ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے طالبان کے حق میں. تو جب اس طرح کی حکومت کے اندر فیصلہ کرنے والے افراد موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں طالبان، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، ان سب کو کون روکے گا؟ حکومت نہیں روک رہی، فوج اپنے ضرب عزم یا کیا جو بھی نام ہے اس کا، اس میں مصروف ہے. تو یہ معاملہ ہے اس وقت فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کہ آپ کے ایکشن کی وجہ سے جناب یہ دیکھیں ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آپ یہ ایکشن اگر روک دیں دہشت گردی کے خلاف تو پھر یہ دہشت گردی ملک میں ختم ہو جائے گی. یہ آرمی کے خلاف ایک طرح کی سازش ہے جو کہ آج کے حکمران سیاستدان آرمی کے اس ایکشن کو انہوں نے اپروو نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف مانا اس ایکشن کو، اور آج بھی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فوج کے ایکشن کے جواب میں یہ دہشت گردی کا الزام لگا سکیں، جبکہ یہ دہشت گردی ان کی اپنی سرپرستی میں ہو رہی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو عدالتوں سے کون چھڑواتا ہے. ان کی نماز جنازہ پر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پاکستان اس وقت ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی سے وہ جو شیعہ وہابی تقسیم ہے وہ بنتی جا رہی ہے. شیعہ سنی ایک طرف ہیں اور وہابیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. آج پاکستان ایک تبلیغی جماعت کا جلسہ مسلسل ہے. آج پاکستان میں وہابیوں کے جو گھر ہیں وہ لال مسجد بن چکے ہیں. ان کو ہر گھر ان کا ایک لال مسجد ہے.
شکریہ.
اور اس تمام صورتحال کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, یہ فیکٹس ہیں.
شکریہ, بہت بہت شکریہ. عابدی صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. عابدی صاحب, اہل سنت والجماعت کے سربراہ احمد لدھیانوی نے جو ٹی وی پروگرام میں بیان دیا تھا اور اس پر مجلس وحدت المسلمین نے احتجاج بھی کیا ہے اور ان کے مواخذے کے ساتھ ہی اس ٹی وی پروگرام کے خلاف بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ احمد لدھیانوی نے جو بیان دیا ہے یہ تو انتہائی خطرناک بیان ہے. یہ پورے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے. احمد لدھیانوی کے اس بیان پر ان سے کوئی مواخذہ کیا گیا؟